الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
جو آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے نا جہاں بھی جس ہی ڈائریکشن میں آتا ہے بادل پہ جانا ہے چاند پہ جانا ہے سورج کو ہاتھ لگانا ہے لگائیں گے ہاتھ کیوں سورج گرم ہوتا ہے ابھی تو سورج نکلتا ہے تو بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے
کیونکہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے نا
ہم ہمارا ارتھ گھوم گیا نا اب دوسری طرف
ارتھ کا ڈائریکشن دوسری طرف ہے چاند کی طرف ہے
سورج آپ کے ملک سے دور ہو گیا ہے کہاں دور چلا گیا
وہ اب ہے نا دوسری ڈائریکشن میں چلا گیا کہ وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے تو اب دوسرے ملکوں کی تو باری آنی چاہیے نا گرمیوں کے لیے
زمین روٹیٹ کر رہی ہے
جی
زمین تو ساکن ہے بیٹا زمین تو روٹیٹ زمین روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے زمین گردش نہیں کرتی
لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے
یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا سائنس کیا سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے
بالکل
اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے یعنی زمین موو نہیں کرتی ساکن کو ایک اچھا سا ورڈ انگلش کا ہوتا ہوگا ساکن کا اسٹیٹک ارتھ اسٹیٹک پوزیشن میں ہے تو یہ موو نہیں کرتی اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے اسلام کی دین کی اعلیٰ حضرت نے اسلام و دین کی بات ہی کی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور کوئی کوسچن ہے ذہن میں
تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پہ سورج آ جاتا ہے پھر چاند آ جاتا ہے تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے
سورج اور چاند تو یہ تو موو کر ہی رہے نا
مطلب
سورج تو بیٹا دیکھے سورج اپنی گول ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائیکل ہے اس کے ساتھ وہ موو کر ہی رہا ہے تو جہاں جہاں سورج موو کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمنگ کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے اب سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج غروب ہو جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں سے سورج غروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع ہوا نا بیٹا
جی جی
سورج نظر آیا کہیں تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے ہم نے ابھی کے ایپیسوڈ میں آج کی اس سیٹنگ میں صرف اس بات کو یاد کر لینا ہے ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ٹھیک ہے ہمارا ٹاپک آج سائنس اور ارتھ نہیں ہے ہم انشاءاللہ کبھی کسی دن سائنس اور ارتھ پر انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام کریں گے ٹھیک ہے بیٹا لیکن آج چونکہ ایک بات چلی تھی کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا زمین سے دور ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ زمین ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے تو یہ چونکہ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکشن ہوئی تو یہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں زمین ساکن ہے زمین اپنی جگہ پر رکی ہوئی ہے اور یہی اسلام کا نظریہ کس کا نظریہ بیٹا
اسلام
کا نظریہ ہے اور ہم نے اسی نظریے کو ہی یاد بھی کرنا ہے اور اسی پر ہم نے اپنا یقین رکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اب دوسرا سوال لیں سائنس نہیں چلو آپ پوچھیں
نگران شورا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کی دنیا میں آج کی جو جنریشن ہے اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے لیکن ہمیں موبائل سے روکا جاتا ہے تو ایسے میں ہم کیسے آگے بڑھیں
یہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بچوں نے یہ سوال کیا تھا تو بیٹا ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے میں نے اس پر اگزامپل دے دی کہ آپ کے ابو گاڑی چلاتے ہیں یہ بھی تو ایجاد ہے یا نہیں ہے
جی
آپ تو آپ کو گاڑی چلانے کیوں نہیں دی جاتی موٹر سائیکل چلانے نہیں دی جاتی ابھی چھوٹے ہیں بہت اچھا جواب ہے آپ نے چھوٹے ہیں تو ایک ایج ہوتی ہے بیٹا ایک کام کی تو جب آپ کا وہ ایج ایریا آ جائے گا نا کہ جس میں آپ کو بہت اچھی طرح اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے گی اور اس کے استعمال کا آپ کو طریقہ آ جائے گا اور استعمال کا وقت بھی آ جائے گا. ایک ٹائم ہوتا ہے بیٹا, اٹس ناٹ ٹوئے, یہ یاد رکھنا ہے نا, موبائل از ناٹ ٹوئے, یہ کوئی کھلونا نہیں ہے. اس کو کھلونے کی طرح استعمال کر کے بیٹا ہم نے لاس کیا ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے, ایک ایجاد ہے, اس کا بیٹا ایک پراپرلی ایک اچھا اور ہینڈسم اور ڈیسنٹ اس کا یوز ہے. جیسے پین ہے نا بیٹا, پین پین ناٹ ٹوئے, پین کا یوز ہے نا بیٹا. اب آپ کو ہم پین دے دیں اور کاپی دے دیں اور آپ کو کچھ نہیں پتا اور آپ پین لے اور کاپی کے بغیر یوں نشان لگاتے رہے, یہ سے بچے کرتے ہیں تو اس سے پیپر بھی ضائع ہوا, ٹائم بھی ضائع ہوا, اس کی انک بھی ضائع ہوئی ہوئی نا بیٹا. تو جیسے آپ کا چھوٹا بچہ, آپ کے گھر میں چھوٹے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی بہن, وہ آپ کے پین پین سے لے لیتے ہیں, کاپی لے لیتے ہیں, آپ کیا کر دیں, دے دو, کیوں کرنے دو, کیونکہ آپ کو پتا بھی یہ بچہ ہے, ابھی اس کو کاپی اور پین کی اس کی ایج ہی نہیں ہے, ابھی تو کھلونے کی ایج ہے. اوکے, تو جس کی کاپی اور پین کی بھی ایج نہیں ہوتی, عمر نہیں ہوتی, اس کو کاپی اور پین بھی نہیں دی جاتی نا, اس کی بعضوں کی کلرنگ ایج ہوتی ہے کہ وہ کلرنگ کرتے رہتے ہیں, بعضوں کی ایکٹیویٹیز کی ایج ہوتی ہے کہ ان بچوں کو ایکٹیویٹیز کراتے رہتے ہیں, ان کی ایجوکیشن ہی ایکٹیویٹیز بیس پر ہوتی ہے. تو بیٹا ایک ایج آئے گی, جب آپ کی کوئی ایج آئے گی, آپ کی عمر آئے گی اور والدین ضروری سمجھیں گے, تب آپ کو کسی ٹیکنالوجی کی طرف لے جائیں گے. موبائل ہی صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے, ٹیکنالوجی تو بہت ساری چیز ہے نا بیٹا, کمپیوٹر بھی تو ایک ٹیکنالوجی, ایون آپ کے ہاتھ میں جو مائک ہے یہ بھی تو ایک ٹیکنالوجی ہے نا, ایک انوویشن ہے نا, ایجاد ایک, ٹھیک ہے بیٹا. تو کون سی ٹیکنالوجی کب, اب بچے کا ہاتھ میں مائک نہیں دیتے, بچہ ہوں کرتا رہے گا, توڑ دے گا, پھینک دے گا, لیکن آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے مائک کو کب یوز کرنا ہے, کب یوز
نہیں
کرنا. تو ہر چیز کی بیٹا ایک ایج ہوتی ہے. ابھی پیچھے ہمارے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے سوئچنگ پر, ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے, مشین ہے نا, کمپیوٹر ہے ان کے پاس, ان کے پاس آپریٹنگ مشین ہے, ایک کے پاس ساؤنڈ مشین ہے. اچھا وہاں بھی یہی ہے, مثال کے طور پہ جو سوئچنگ کر رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو سوئچنگ کر رہے ہوں گے, آپ دیکھتے ہو نا کبھی ان کا فوٹو آ جاتا ہے, کبھی یہ آ جاتا ہے, تو یہ ادھر سے گھماتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ادھر ان کی انگلیاں چلتی رہتی ہیں, یہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ان کو کہیں کہ آپ ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی مشین پر بیٹھ جائیں تو وہ نہیں چلا سکیں گے, پاسبل ہے. اور جو ساؤنڈ چلا رہے ہیں ان کو بولے گا اس مشین پر بیٹھ کے سوئچنگ کرے تو وہ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ان کو یہ نہیں آتا ہوگا اور ان کو
یہ نہیں.
تو جس کو جو چیز نہیں آتی اگر آپ اس کے ہاتھ میں وہ چیز دے دیں گے تو وہ اس کو خراب کر دیں گے, ضائع کر دیں گے, اس کا مس یوز ہوگا. اوکے بیٹا, تو آپ کا ایج, آپ کی نالج, جب وقت آئے گا آپ کے پیرنٹس, آپ کے ٹیچر, آپ کے گارڈینس جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں, تب وہ ڈیسائیڈ کریں گے بیٹا کہ آپ کو کیا دینا چاہیے اور کیا. آپ کو ایسا لگے گا کہ ٹھیک ہے اب ہمیں نہیں دیتے, اوروں کے ہاتھوں میں تو ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے موٹر سائیکل چلاتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایکسیڈنٹ زیادہ تر بچوں کا ہوتا ہے نا بیٹا. کیوں, کہ ان کو چلانے نہیں آتی تھی. اچھا چلانے تو بہت اچھی آتی تھی بٹ ان کے پاس سینس نہیں تھا بیٹا, اتنی اپروچ نہیں تھی کہ چلانی کیسے ہے, وہ پھر مستی میں چلائیں اور پھر بےچارے سلیپ ہو جاتے تھے. تو چونکہ پہلے سے ان کو چیز دے دی گئی, دیکھیں نیشنل رول ہے, قانون ہے, ملکی قانون جس کو کہتے ہیں نا, کہ 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بنتا ہے, پھر اس کے بعد ڈرائیونگ, چاہے وہ موٹر سائیکل کا لائسنس ہو یا کار کا لائسنس ہو, اس کے بعد اس سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے, ہمیں بھی ٹیسٹ دے کر لائسنس لینا چاہیے تاکہ ہمیں رولس اینڈ ریگولیشنز پتا ہوں گے تو ہم خود بھی بچ سکیں گے اور دوسروں کو بھی بچا سکیں گے. تو کیوں ٹیکنالوجی سے دور رکھا جاتا ہے, کیوں ٹیکنالوجی کی طرف لے جائے, بعض اوقات کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں, مدرسوں میں, ہے نا, کمپیوٹر کی سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہوتا,
جی ہوتا ہے,
سائنس کا سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہوتا,
جی ہوتا ہے
سائنس. اچھا اسی طرح بعض اوقات اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ٹیکنالوجی کے بیس پر آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز بھی کرائی جاتی ہیں, رائٹ. تو آپ کو بالکل تو टेक्नोलॉजी से दूर नहीं किया जा रहा होता, उसको समझने का मौका मिल रहा होता है, बट एज वाइज जल्दी बेटर ना करें। जितने भी मेरे बच्चों सुन रहे हैं देख रहे हैं, जल्दी ना करें, एक वक्त का इंतजार करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज आपके करीब भी आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों में इस वक्त टेक्नोलॉजी के तौर पर एक इंटरेस्ट डेवलप है, तो क्यों ना चले बच्चों को एक टेक्नोलॉजी बेस पर कोई चीज बताई जाए और फिर इस पर अल्लाह की कुदरत का भी एक नजारा आपको करवाया जाए। तो मदनी चैनल पर टेक्नोलॉजी बेस पर एक प्रोग्राम आया था जिस पर एक अच्छी टेक्नोलॉजी के तौर पर और इसके अलावा बहुत सारी बातें सिखाई और समझाई गई थी। आइए आपको एक सेगमेंट दिखाते हैं।
आँख अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक ऐसी अनमोल नेमत है जिसके जरिए तमाम जहानों के पालने वाले रब्बुल आलमीन की तख्लीक करदा ना सिर्फ दिलकश और दिल फरेब नज़ारों को अपनी आँखों में समेटता है, बल्कि इसी आँख की बसारत और इसकी वसअत के जरिए इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को जाँचता और पहचानता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अता करदा ये नेमत किस तरह इंसानी जिस्म में रहकर इंसान की रहनुमाई का सबब बनती है? इससे पहले हम आँख से मिलती जुलती शय यानी कैमरे की बात करें तो कैमरे की इजाद आँख की मरहूने मिन्नत है। कैमरा एक ऐसा आला है जिसके जरिए साकिन या मुतहर्रिक तस्वीर को महफूज किया जा सकता है और ये बुनियादी तौर पर एक लाइट प्रूफ खाने पर मुश्तमिल होता है जिसके एक जानिब रोशनी का रास्ता होता है और उसके अंदर रोशनी के लिए हसास एक फिल्म लगाई होती है जो अक्स को अपनी सतह पर सब्त कर लेती है। लिहाजा ये तो है इंसान का बनाया हुआ आला जो कि हूबहू किसी भी चीज को अपने अंदर समेट कर महफूज कर लेता है। ये आँख के उसूलों पर इजाद हुआ है, इसीलिए कैमरे को आँख की मिसल कहा जाता है। अलबत्ता इस आँख के हवाले से कई रिसर्च की गई है, मगर शायद हम अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई इस आँख की वसअत और गहराई बयान ना कर पाए क्योंकि हमारी सोच इस आँख की वसअत का अंदाजा लगाने से कासिर है। ताहम आँख जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो रोशनी का एहसास कर सकता है और बिनाई का अमल अंजाम देता है। इंसान अगर जरा भी गौर व फिक्र करे तो उसे बखूबी अंदाजा होगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इस तख्लीक के चंद पहलुओं का जायजा लेने से ही इंसान की अकल दंग रह गई है, तो इसके दीगर निजाम का क्या आलम होगा कि इंसान के बनाए हुए कैमरे के जरिए नीलो दूर जिस चांद को देखने के लिए नित नए तरीके और टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, इसी चांद को अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक करदा ये आँख बिना किसी मुश्किल के और किसी भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिए बगैर आसानी मुलाहिजा कर सकती है। इंसानी आँख 10 मिलियन रंगों की शनाख्त करने की सलाहियत रखती है, यानी इंसानी आँख 576 मेगापिक्सल की तस्वीर बनाती है।
जी रमजान भाई आप पूछे।
मेरा निशरा अभी आपके सवाल से ही मैंने सवाल निकाला कि जैसे कि आप छोटा बच्चा है, अब उसके हाथ में एक टेक्नोलॉजी मशीन कुछ भी दे दिया जाए, जैसे मोबाइल हो गया, आजकल मोबाइल ज्यादा यूज में आ जाता है, फिर उसमें उसको पोयम लगा दी, अब छोटा बच्चा कितनी देर अपने हाथ में मोबाइल पकड़ सकता है? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। वो फिर इशारा देता है 2-3 बार, और अगर वो समझ नहीं पाए और उसे हाथ से ना लिया गया तो वो फेंक देता है मोबाइल। उससे कई नुकसान हो जाए, बड़ा मोबाइल हो तो ज्यादातर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
हाथ में देने की क्यों जरूरत पड़ गई?
वो पोयम देखता है तो वो चाहता है कि मैं अपने हाथ में ही ले लूं।
अच्छा, बच्चा हाथ में ले लेता है, तो बच्चे के हाथ में वैसे दे नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चा फेंक देगा, नुकसान होगा। एक बात बेटा, बात याद, अपनी चीज को भी जाया होने से बचाना होता है। भले चीज मेरी है, खरीदी भी मैंने, लेकिन मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा, मैं इसको जाया नहीं होने दूंगा। इसमें कई सूरतों में गुनाह हो जाता है ना
जी,
जब बालिग होगा तो फिर उसको गुनाह भी होगा, तो ये भी जरूर देखा जाएगा। जी बेटा, अब यहाँ से सवाल होगा। आप
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
निगरानी शूरा, मेरा आपसे ये सवाल है, हमें जो स्कूल में छुट्टियां सैर तफरी के लिए मिलती हैं वो सारी ज्यादातर होमवर्क करने में और घर में रहने में गुजर जाती हैं, ऐसी छुट्टियों का क्या फायदा?
तो आपको कैसी छुट्टियां गुजारनी है?
मस्ती वाली हो, थोड़ी सैर तफरी वाली हो।
तो कहाँ मस्त सैर तफरी क्यों करेंगे? हम मदीने जाएंगे
इंशाल्लाह,
हम मक्के जाएंगे
इंशाल्लाह,
हम बगदाद जाएंगे
इंशाल्लाह,
देखना है तो मदीना देखिए,
इंशाल्लाह
कसरे शाही का नजारा कुछ नहीं, तो हमारी बेटा मेंटेलिटी तब्दील करनी पड़ेगी, हमें मजा कहाँ आना चाहिए ये देखना है। तो जब हमें, जब कई ऐसे घर होते हैं जिनमें छुट्टियां होती है, तो वो मदीने जाते हैं, मक्के जाते हैं, उमरा करते हैं, हज करते हैं, बगदाद जाते हैं, है ना, औलिया कराम के मजारात पर जाते हैं। तो बच्चों को, मर्दों को मजारात पर, इन जगह पर जाना भी चाहिए ना, इसकी बरकतें मिलती हैं। और फिर एक अच्छी सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। अब अगर बहुत छुट्टियां आ गई हैं, अबू की भी छुट्टियां आ गई हैं, तो अबू को लेकर 1 महीने के मदनी काफले में चला जाए, घूमते
सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह।
रहे और मस्जिद में रहेंगे। इस तरह 12 दिन के मदनी काफले में सफर, दावत इस्लामी ने मौके तो दिए हैं। तो यूं तो अपनी सोच को इस सब लेकर आइए बेटा। और हम अपना मदनी चैनल लाए भी इसीलिए ताकि जो गलत सोचें और एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जो बच्चे जा रहे होते हैं, हम इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेकर आए। ठीक है ना बेटा?
कोई ऐसा झूठ भी है जिसकी इजाजत हम बच्चों को दी जाती है, अगर उस झूठ से किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा और हमारा फायदा भी हो रहा है, तो इसमें क्या मसला है?
झूठ की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। आज झूठ की ट्रेनिंग देनी नहीं चाहिए, कि अभी बच्चे में इतनी समझ नहीं है कि मुझे कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं
नहीं
बोलना। तो अभी वो एज नहीं है बेटा। झूठ की अकसाम है, झूठ की बहुत डेफिनेशन है, लेकिन बच्चों को जो बात सीखनी चाहिए वो ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना। झूठ की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है? खिलाफ वाकया बात करना, यानी जो बात या जो काम हुआ नहीं है वो बयान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
झूठ
झूठ हो जाएगा। और हमने पिछले प्रोग्राम में क्या सिखा है, झूठ
नहीं बोल।
नहीं बोलना। ठीक है जी बेटा, अब आप पूछें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मेरा आपसे सवाल है, हमें संजीदा और ज्यादातर खामोश रहने का हमें संजीदा और ज्यादा खामोश रहने का कहा जाता है। बच्चे बचपन में भी संजीदा रह कैसे सकते हैं?
समझ गए, जो समझे ना वो पूछ लें।
हमें संजीदा और ज्यादातर खामोश रहने का कहा जाता है, बच्चे बचपन में भी संजीदा कैसे रह सकते हैं?
आ गया ना, ये एक डेमो हुआ है आपके सामने। इन्हें सवाल लिख कर दिया गया था और ये सवाल बयान नहीं कर पा रहे थे। अगर मैं इन्हें फौरन स्विच कर देता तो हो सकता था कि शायद ये फिर पढ़ पढ़ कर ही सवाल करते हो, शायद ये अपना वो कॉन्फिडेंस स्टेब्लिश ना कर पाते, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप ना कर पाते। हंसना भी नहीं चाहिए कि आपको आता नहीं है, क्योंकि मन दही का दुही का, जो किसी पर हंसता है फिर उस पर भी लोग हंसते हैं। तो हंसना भी नहीं चाहिए, इन्हें मौका देना चाहिए कि ठीक है बेटा आप, अच्छा मौका जब भी आप देखें तो उसमें आपका भी टेम्परामेंट होना चाहिए, आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। वे जब आप किसी को खड़ा करते हैं ना, जब किसी को आप खड़ा करने जाते हैं तो आपको भी ताकत लगानी पड़ती है। समटाइम उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो खड़ा हो सके, तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है कि उसको खड़ा कर दें आप। एक बार तो खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह वो चलना शुरू कर देगा। हम बड़ों का, वैसे नॉर्मली बड़ों का काम होता है कि अपने बच्चों को स्पेस दें, इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, और जब ये ना कर सकते हो तो आप इनके अंदर एक कुव्वत पैदा करें कि नहीं बेटा आप करें, मैं हूं आपके साथ। यकीन माने, मेरे जो बड़े चैनल देख या सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा और बड़ा ह्यूज वर्ड है जो मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं। बेटा मैं आपके साथ हूं, ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये एक बेटे के लिए बहुत बड़ा वर्ड होता है, बेटी के लिए, औलाद के लिए, पेरेंट्स की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट वर्डिंग है ये। बड़ा मतलब कि ये नहीं, मैं वजह शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके साथ हूं, आप करो। और उसको मतलब के करने दें, उसको खड़ा होने दें, नजर रखें कि वो कोई लॉस ना कर जाए, उसको कोई डैमेजेस ना आ जाए, लेकिन उसको करने दें। ये एक सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप करने दें काम, और उसको मिस्टेक करेगा, मिस्टेक करता है तभी तो सीखता है ना, एक बार गलती करेगा दोबारा फिर वो उससे बचने की कोशिश करेगा। तो ये छोटा सा आपके सामने डेमो, एक एक आपके सामने एक मंजर आया कि ठीक है वो पढ़ा जो लिख, अब इनको क्या था जो कुछ लिखा है मैंने वही पढ़ना है, वो यही बेहतर था। देखिए मजमून समझ गए थे, मजमून को इन्होंने जो बयान किया तो ऑलमोस्ट वही वर्डिंग इन्होंने यूज की, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। बेटा दोबारा सवाल दोहरा दो।
हमें संजीदा और ज्यादातर खामोश रहने का, हमें खामोश रहने का कहा जाता है, बच्चे बचपन में भी खामोश कैसे रह सकते हैं?
ये पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हो रहा है, इसी बार का है।
हमें संजीदा और ज्यादातर खामोश रहने का कहा जाता है, बच्चे बचपन में भी संजीदा कैसे रह सकते हैं?
एक बार भी नहीं अटके अब, ठीक है? अब एक अभी अभी चौथी बार तो नाराज हो जाएंगे, संजीदा हो जाएंगे फुल, ठीक है? अब नहीं करना, लेकिन ये देखे कि ये कहते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस कराएं तो इंशाल्लाह ताला ये कॉन्फिडेंस बस बेसिक चीज होती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस ही डेवलप करना होता है और साथ खड़ा होना पड़ता है इनको, मतलब के छोड़ ना दें। वो कहते ना कि कमर पे रस्सी बांधे और दरिया में धक्का दें, रस्सी हाथ में रखें, डूबने ना दें, तैरने दें। एक एक एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, तो ये होता था। अब आपको कब कहा है बेटा कि आप संजीदा रहा करो, खामोश रहा करो? बच्चे तो खिलते खिलाते रहते हैं और बोलते रहते हैं तो यूं अच्छे लगते हैं। अच्छा फिर बेटे फिर एज होती है, छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना उनके साथ तो ऐसा नहीं मना किया जाता। हाँ जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे आप थोड़े बड़े हो गए हो तो आपकी उम्र के बच्चों को नॉर्मली पेरेंट्स समझाते हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना बेटा, किसी के यहाँ एज ए गेस्ट जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं, तो वहां पर अगर बच्चा संजीदा ना हो, सीरियस ना हो, और जब बड़े बात करो बीच में बोलना शुरू कर दे तो ये एक बैड साउंड देता है ना, ये एक मैनर्स नहीं है, अखलाक नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं होता। और फिर ऐसे बैठे बैठे मस्ती मजाक करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, तो फिर ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं कि बेटा बी सीरियस और बेटा कीप क्वाइट, खामोश रहा करें बेटा, संजीदा रहा। यानी जब बच्चा बिल्कुल खामोशी के साथ, एक संजीदगी के साथ, संजीदा में गुस्सा नहीं होता लेकिन संजीदगी और बेटा खामोश, तो इसकी लोग तारीफ बहुत करते हैं। पता है आपको जब आप कहीं जाकर अबू अबू अम्मी के साथ अगर आप कहीं जाएंगे और आप बैठे रहेंगे और बड़ों की बातें सुन, बाकी मिस्सा के तो बड़े बातें कर रहे हैं और आप सुनते रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे, कोई छेड़ेंगे नहीं, बोलेंगे बीच में नहीं, और अगर कोई मुस्कुराने की बात होगी तो मुस्कुरा रहे होगे, वरना यूं एक नॉर्मल बैठे रहेंगे ना, आपको पता है लोग बहुत तारीफ करेंगे, आपके अम्मी अबू कहेंगे आपका बच्चा बहुत समझदार है, आपका बच्चा बहुत सुलझा हुआ है, वेरी क्लेवर, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तारीफ करेंगे आपकी, तो तारीफ अच्छी लगती है ना। जब हम इस तरह करेंगे ना तो इंशाल्लाह हो जाए, और आपकी जो एज है ना उसमें इस तरह की तरबियत होनी चाहिए, है ना जी। अब आपने सवाल नहीं किया ना बेटा, अब आप सवाल करें।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
निगरान शुरा, मेरा ये सवाल है कि अगर हम किसी सौदे में से कोई चीज ले लेते हैं, पैसे बच जाए उससे कोई चीज ले लेते हैं, ये कोई चोरी तो नहीं हुई? ये तो हमारे अम्मी अबू के पैसे होते हैं।
अच्छा, आपको जैसे अम्मी अबू ने कोई चीज खरीदने के लिए भेजा और 100 रुपये आपको दिए और आपने वो चीज 90 रुपीज के लिए 10 रुपीज आपके पास बच गए, तो आपने 10 रुपीज की कोई और चीज खरीद ली, ऐसा करना नहीं चाहिए। या तो अम्मी अबू से इजाजत ले लें कि अम्मी अगर कुछ पैसे बच जाए तो मैं ऐसी कोई चीज ले लूं, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसे बच गए हो इससे अम्मी को या अबू को कोई चीज लेनी हो और हमने खर्च कर दिए तो फिर नुकसान हो जाएगा ना बेटा। तो जो भी करे अम्मी अबू से पूछ कर करना चाहिए। जी रमजान भाई।
निगरानी शुरा, हम अगर झूठ बोलते हैं तो बच जाते हैं, जैसे अगर मैंने कह दिया कि मेरी होमवर्क नहीं किया मैंने और ये कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो बच गया, और अगर सच कहा जैसे मैं भूल गया था तो अब मार खानी पड़ती है।
नहीं इंशाल्लाह कोई भी नहीं मारेगा, वो नहीं मारा करे बच्चा जब सच बोला करे तो नहीं मारा करे, बल्कि सच्ची बात है कि अगर झूठ भी बोले ना तो बैठ कर समझाएं। यानी बच्चे के दिल में झूठ से नफरत पैदा करवाए, बच्चे के दिल में झूठ का डर पैदा करा कि झूठ बोलने से नुकसान होगा, तो कल ये कहीं भी झूठ नहीं बोलेगा इंशाल्लाह। उस बुरे काम से कि जब तक बच्चे को नफरत और उससे घिन पैदा नहीं होगी ना, तो बच्चा बच नहीं सकेगा। आपके डर से कभी आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा, फिर किसी और के सामने झूठ बोल देगा। तो बुराई की नफरत दिल में पैदा करवाने की कोशिश करनी चाहिए, और बच्चा अगर सच बोल दे तो उसके सच बोलने पर फिर उसको मारा ना जाए, मिस्टेक की है फिर समझाया जाए। समझाना भी एक बस वो पता चले कि मिस्टेक 5 मिनट की थी, समझाया 5 घंटे तक, तो ये भी बहुत बड़ी सजा है। तो समझाना, जितने कम वर्डिंग में और कितने अच्छे अंदाज से आप समझा देंगे ना, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम उसको भी ये तरबियत भी की जाए ताकि वो आइंदा सच्ची ही बोले, झूठ ना बोले, वरना डर के मारे फिर बेचारा झूठ बोलना शुरू कर देगा। तो ये एहतियात करनी चाहिए। अलबत्ता बच्चों को हमेशा सच बोल, बच्चे बड़े हमेशा सच बोलना चाहिए। वो एक कहते सांच को आंच नहीं, जब सच बोलेंगे तो इंशाल्लाह पार लग जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। जी बेटा आप पूछे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
निगरानी शूरा, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या बच्चों को हर चीज में रोक टोक करने से इनका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म नहीं होता?
हर चीज में बेटा रोक टोक करते ही तो नहीं है। आप जब कहते हैं कि स्कूल जाना है तो आपको रोकते हैं? आप कहते हैं मुझे सोना है तो आपको रोकते हैं? आपको मुझे खाना खाना है तो आपको रोकते हैं? तो हर चीज में रोक टोक तो नहीं करते। जहां वालिदैन को रोकना होता है वहां रोकते हैं, जहां टोकना होता है वहां टोकते हैं, जब करने देना होता तो करने देते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है बेटा, चले आप सवाल करें बेटा। जी
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
निगरानी शूरा, मेरा आपसे सवाल ये है कि मदरसे जाने वाले बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं कि स्कूल जाने वाले?
मेरा नजरिया ये है, मेरी सोच ये है कि मदरसे जाने वाले यानी कुरान पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा ज़हीन होते हैं, क्योंकि कुरान में एक उसकी एक अपनी बरकत है और कुरान का एक अपना नूर है, और कुरान अल्लाह की किताब है। जब कोई शख्स अल्लाह की किताब पढ़ता है ना, तो अल्लाह ताला की किताब उसके दिल को, दिमाग को, सोच को और खोलती है। यानी यूं समझे कि हाफिज बहुत जल्दी दीगर पढ़ाइयां कर लेगा, लेकिन दीगर पढ़ाई करने वाला हाफिज नहीं बन सकेगा इतनी जल्दी। तो कुरान का एक अपनी बरकत और कुरान का एक अपना एजाज है। आपका नहीं हुआ सवाल, आप बेटा आप करें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
निगरानी शूरा, मेरा आपसे सवाल है कि अम्मी अब्बू अक्सर हमारे किसी बात से नाराज हो जाते हैं, तो उन्हें मनाने का कोई अच्छा अंदाज बता दें कि हम मानते नहीं है।
पांव चूमकर, इनकी खिदमत करके, इनके आगे मुस्कुराकर और इनके काम करके, फिर अल्लाह से दुआ करके, यूं करेंगे तो इंशाल्लाह ये मान जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। आप बेटा सवाल कर लें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
निगरानी शूरा, मेरा आपसे सवाल है कि हर बच्चा दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होता है, तो क्या हर बच्चे को एक ही तरह से डील करना चाहिए?
नहीं, हर बच्चे का एक अपना नेचर है और हर एक को उसके नेचर और तबीयत के मुताबिक डील करना चाहिए। डॉक्टर भी पेशेंट को उसकी डिजीज के मुताबिक, बीमारी के मुताबिक डील करते हैं, और बीमारी में भी उसकी फिजिकली फिटनेस और उसकी दीगर चीज़ों को देख कर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। लिहाजा बच्चों के मुख्तलिफ नेचर होते हैं, बाज़ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, बाज़ कम सेंसिटिव होते हैं, बाज़ बहुत शार्प होते हैं, बाज बहुत ही ज्यादा मतलब कि वो कुंद जैन जैसे कहें ना, कि इनकी बाज इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आप सारे बच्चों को एक ही तरह का देखेंगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह खाना होता है, हर बच्चे को एक अलग अलग गिजाएं पसंद होती हैं, कलर होता है हर बच्चे को अलग अलग, आप एक को ब्लू पसंद है तो दूसरे बच्चे को ब्लू पसंद आएगा। जिस तरह बच्चों के कलरिंग के च्वाइस अलग होती है, खाने की च्वाइस अलग होती है, इनके कद अलग हैं, इनकी शक्लें अलग हैं, तो इनका नेचर भी अलग होता है। तो ये बड़ों का काम है कि अपने बच्चों के नेचर को पहचाने। बाजों का नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव भी होता है, बाद बच्चे थोड़े एग्रेसिव भी होते हैं, तो उनको उनके अंदाज से डील करें। सारा मतलब हमारी पसंद ही का मिजाज नहीं बनता, बच्चे बच्चे होते हैं, और ये इसी नेचर के साथ साथ वो हमें नहीं कि इस नेचर में जो बहुत अच्छे नेचर वाला बच्चा होता है तो उसके उस अच्छे नेचर को निखारने की जरूरत होती है। अगर उसके आदतों में कुछ खराबियां होती हैं तो उन खराबियों को दूर करने की फिर हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो ये जैसा बच्चा, बाद बच्चे थोड़े एबनॉर्मल होते हैं, बाद बच्चे बहुत नॉर्मल होते हैं, तो उनको उनकी जो इनका जो आदतें होती हैं या जो एबनॉर्मल होते हैं उनको उनकी तरह चलना पड़ता है। जैसे बाद बच्चे बेचारे बचपन पैदाइशी गूंगे बेरे होते हैं, बाद इसका दूसरा भाई होता है या बहन होती है वो गूंगी बेरी नहीं होती, तो वो जब गूंगा बेरा बच्चा होगा, डेफ एंड डैम होगा, तो उसको डेफिनेटली आपने उसको उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं अमूमन कि अगर किसी घर में कोई बच्चा गूंगा बेरा है, डेफ है, डैम है, तो मेरी तो दरखास्त है, ये रिक्वेस्ट है जस्ट, कि उस घर में किसी एक को साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई उसके साथ कोई डिस्कशन करने वाला फैमिली मेंबर मिलेगा तो उसकी बहुत सारी घबराहट जो है ना, और जो इसका मतलब कि वो हो जाता है उसको थोड़ा वो जज्बाती हो जाता है गुस्से में, क्योंकि उसकी कोई बात समझ नहीं रहा होता बेचारे की, और आपस में बैठ कर बातें कर रहे होते, हंस बोल रहे होते, और वो उसको कुछ सुन भी नहीं रहा होता, और हम भी एक ना चाहते हुए भी वो इग्नोर हो रहा होता है, तो उससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स अमूमन घर में क्रिएट हो जाते हैं, और फिर वो जिद्दी भी हो जाता है और खुद को अंडर एस्टिमेट ले रहा होता है, फिर उसने फिर इस तरह अपनी गैदरिंग बना लेनी होती है, तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया बच्चे ने कि क्या सबके नेचर और मिजाज सेम होते हैं, नहीं होते। हालांकि आप देखिए कि माँ बाप एक ही माँ बाप के इतने बच्चे हैं, लेकिन सबके सब नॉर्म या तो सबके सब चेंज होते हैं, या बहुत ज्यादा बात होगा कि वो छोटी बहन और बड़ी बहन एक जैसी होती है तो बीच की बहनें अलग होती हैं, तो एक भाई और बहन का मिजाज एक होता है तो दूसरे भाई और बहन का मिजाज एक होता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों में वालिदैन के नेचर पार्शली तकसीम हुए हुए हो सकते हैं, कि कुछ माँ का नेचर बच्चे में आ गया तो कुछ बाप का नेचर आ गया, तो किसी में माँ का नेचर ज्यादा बाप का नेचर ज्यादा आ गया। अच्छा, बाद वक्त ये होता है कि इमाम गजाली अलैहि रहमान ने वजाहत की है कि बच्चों में मामू के भी नेचर आ जाते हैं, यानी बच्चा अपने मामू के नेचर को पकड़ लेता है या मामू की आदतों को पकड़ लेता है, तो ये इस तरह होता है कुछ फैमिली मेंबर की चीजें आ जाए। इसलिए कहा गया है, ये थोड़े बड़ों के लिए मैं बात कर रहा हूं, कि जब शादी करें ना तो अच्छे खानदान में करें, ये याद रखिएगा, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद खानदान के अफराद की आदतों को लेता है। तो ये अल्लाह करे, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ बड़े समझ गए, क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादातर सिलसिला है तो कुछ ज्यादा हैवी बातें करने का भी दिल करता भी है तो, लेकिन मुझे रुकना पड़ रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद मैंने चंद चीजें अर्ज कर दी हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल था आखिर में जो हुआ, बच्चों के नेचर के हिसाब से वालिदैन को चाहिए कि आपस में डिस्कशन करें, नेचर को स्टडी करें, उसके मुताबिक उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है उसको आप करेंगे। तो आप कहेंगे यार तुम बहुत मुश्किल कर रहे हो इमरान पेरेंट्स के लिए। नहीं, मैं मुश्किल नहीं कर रहा, पेरेंट्स ने बहुत आसानियां कर ली अपने लिए, इसके वजह से बच्चे प्रॉब्लम में आ गए। हम पेरेंट्स हैं, वी आर पेरेंट्स, हम लोग माँ बाप हैं, तो हम तो पहले उस्ताद हैं इनके। माँ मेल एंड फीमेल दो टीचर है घर के अंदर, घर एक तरह से इंस्टीट्यूशन है, और आप जो इनका पूरा एक सिलेबस है कि इनको क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, और माँ बाप को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों का कैरिकुलम सिलेबस क्या है। एट द साइट ऑफ पेरेंट्स, मैं स्कूल और कॉलेज की और मदरसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन घर के अंदर ये बाकायदा है, इसको हमें पढ़ना और सीखना पड़ेगा। इंशाल्लाह इससे हमारी नस्लों को अल्लाह ने चाहा तो संवरना नसीब हो जाएगा। इजाजत दीजिए, मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी मुजाकरे देखते रहिए, और अपने घर में दावत इस्लामी का मदनी माहौल को मतलब के रचने बसने दीजिए, घर में दरस फैजान सुन्नत जारी कीजिए, मदनी इनामात पर अमल कीजिए। اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم.